بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدر چینل کے ناظرین، احکام قربانی لیے ایک مرتبہ پھر آپ کے درمیان موجود ہیں، اور ہمارے درمیان الحمدللہ ہمارے پیارے پیارے مفتیان اکرام مفتی محمد شفیق اتاری اور مفتی محمد کفیل اتاری مدنی ہمارے درمیان موجود ہیں. بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے مفتیان اکرام کی طرف. مصطفی، آج کا ہم جو پہلا سوال آپ سے کریں گے، ہمیں یہ بتائیے، ہماری یہ رہنمائی کیجئے کہ قربانی کا شریعت مطہرہ میں شرعی حکم کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی بہت ایک اہم ترین فریضہ ہے. قربانی اصل میں یہ تو ہے یاد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام.
صحیح.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے. اور اس میں صحابہ نے پوچھا، ہمارے لیے ثواب فرمایا کہ بال کے بدلے میں ثواب ہے. اس اعتبار سے یعنی قربانی کو سنت بھی فرمایا گیا، ٹھیک ہے، کہ سنت ابراہیمی ہے، سنت مصطفیٰ ہے. لیکن جب شرائط پوری پائی جائیں گی تو اس کے جو حکم کے اعتبار سے نا، تو وہ واجب کا حکم ہے.
اچھا.
کئی چیزیں ہم سنت کہتے ہیں، داڑھی رکھنا سنت ہے، تو یہ سنت تو ہے لیکن اس کا حکم وہ واجب ہے. تو اب جو شخص قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں، وہ اگر خلاصتاً قیمتاً میں بتاؤں تو 52 تولے چاندی جس کی رقم جس کے پاس موجود ہو، اور یا اتنا سونا چاندی مکس ملا کر اگر ان کو دیکھا جائے تو اس کا 52 تولے چاندی کے برابر پہنچتا ہو، بھلے اس کے پاس کچھ پرائز بانڈ یا حج سے زائد سامان ایسا ہے کہ سب کو ملائیں تو اس کی رقم یہ پہنچ جاتی ہو،
صحیح،
تو یہ کہلاتا ہے صاحب نصاب غنی شخص.
صحیح.
تو ہر وہ غنی مالدار یعنی جس کے پاس یہ نصاب ہے، وہ بالغ شخص ہو اور مقیم بھی ہو، قربانی کے دنوں میں مسافر شریف بھی نہ ہو،
صحیح،
تو ان پر قربانی واجب. اب یہ شرطیں چاہے عورت میں پائی جائیں چاہے مرد میں پائی جائیں،
صحیح،
یعنی دونوں کے اعتبار سے
دونوں کے لیے سیم،
دونوں کے لیے سیم حکم ہے، اور ان پر اسی طرح قربانی کا
شرائط پوری ہوتی ہے تو وہ واجب ہے،
واجب آئے گی قربانی.
صحیح. تو اچھا، اس کے لیے کیا بالغ ہونا شرط ہے؟
بالغ قربانی کے وجوب کے لیے تو بالغ شرط ہے، یعنی نابالغ پر قربانی نہیں ہے.
صحیح.
نابالغ چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ، اس پر قربانی نہیں ہے، نہ اس کے اپنے مال سے، نہ والد پر لازم ہے کہ وہ نابالغ کی قربانی کرے. البتہ اگر نابالغ کی طرف سے قربانی والد کرتے ہیں تو جائز بالکل ہے، جیسے کئی گھرانوں میں پورے پورے بچوں کی طرف سے بھی کر دی جاتی ہے، گھر والوں کی پوری فیملی ممبرز کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، جائز ضرور ہے، کر سکتے ہیں. لیکن جو شریعت نے عبادات رکھی ہے نا، تو ان میں بلوغت بالغ ہونے کا بڑا اعتبار ہے. حج دیکھیں، نماز دیکھیں، روزہ دیکھیں، یہ سب چیزیں تو بالغ ہیں ان میں. ہاں، نماز کی طرف ہم آئیں تو شریعت مطہرہ نے پہلے سے ترغیبات شروع کر دی ہے کہ 7 سال میں کہو، 10 سال میں تھوڑی سی اور سختی کر کے ان کو نماز پڑھاؤ. روزے میں بھی یہ احکام ہے، لیکن ایک شرط زائد ہے کہ اگر طاقت رکھنے کی ہو. تو قربانی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ان کو ترغیب دو کہ اپنے مال سے تم قربانی کرو، کیونکہ نابالغ کو اپنے مال سے تو وہ صدقہ بھی نہیں کرے گا، نابالغ کا مال جو ہے. ہاں، والد اپنے مال سے اس کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو بالکل جائز ہے، کر سکتا ہے.
اچھا، جیسا کہ ترغیب دینے کے اعتبار سے ہے کہ جب آپ خرچ کرو، صدقہ دو،
اپنے بچوں کے ہاتھ میں دو اور ان کے ہاتھوں سے خرچ کروائیں،
تو کیا قربانی کے حوالے سے بھی ایسی کوئی چیز پائی جاتی ہے کہ بھائی جب قربانی کریں تو جانور خریدتے وقت بچوں کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ ان میں شوق پیدا ہو؟ اب جب قربانی کا جانور گھر پہ آیا تو بچوں کو شوق کے لیے اپنے ساتھ مل کر ان کو چارہ دینے کی ترغیب، تو کیا ایسا کرنا چاہیے؟
دیکھیں، قربانی جو ہے وہ دین کے شعائر میں سے، تو قربانی کے جانور جو ہے وہ ان کی تعظیم کرنا، احترام کرنا، یہ قربانی کی وجہ سے ایک مستحسن امر ہے. والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو قربانی کی لیے شروع سے ان میں شوق بڑھانے کے لیے منڈی لے کر جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں
ہے.
اچھی بات ہے، اچھی نیت کے ساتھ لے کر جائیں گے تو اچھا ہے. عموماً تو بچے ویسے ہی جو ہے وہ شوقیہ جو ہے وہ ساتھ چلنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن اچھی نیت کریں گے کہ واقعی ان کو شروع سے جو ہے وہ قربانی جیسے اہم عبادت کی اہمیت بتائی اور سمجھائی جائے، اور شروع سے ان میں ذوق و شوق پیدا کیا جائے کہ جب یہ بڑے ہو جائیں تو یہ بھی جو ہے وہ قربانی کا اہتمام کریں، تو اس اعتبار سے یقیناً ایک اچھا عمل.
جو شرعی فقیر ہے، جس کے پاس نصاب نہیں ہے، مال نہیں ہے، اس پر قربانی کا وجوب نہیں ہے، کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے اور اس پر قربانی واجب ہو گئی ہو؟
बिल्कुल ऐसी सूरत है, ये वो शख्स है कि जिस पे शरीयत कुर्बानी वाजिब नहीं फरमा रही,
सही है,
यानी उसके पास माली ताकत इतनी नहीं है, लेकिन उसने अपने शौक से जानवर कुर्बानी की नीयत से खरीद लिया। मिसाल के तौर पे अगर हम निसाब की बात करें तो निसाब 52.5 तोले चांदी का वो 1,46,047,49,50 ये लगभग बन रहा है, ठीक है,
आजकल
आजकल तो जो भी रेट है। अब अगर किसी आदमी के पास 60,000 थे, 70,000 रुपए थे, यानी उतना निसाब ही नहीं, या टोटल चांदी सब कुछ मिलाकर ही उसके पास 60,000 रुपए बने, वो गया और जाके 20-25,000-40,000 रुपए का बकरा लेकर आ गया,
सही,
इस नियत से ही उसने खरीद लिया, तो अब उसने खुद ही अपने ऊपर ये खरीद कर वाजिब कर लिया।
अच्छा,
अब ये नहीं कह सकता कि मैं मेरे ऊपर वाजिब नहीं तो मैं इसको बेच दूं, वो उस पर लाजिम हो चुकी है क्योंकि उसने कुर्बानी की नीयत से खरीदा है।
नीयत से
कुर्बानी की नीयत से खरीदेगा तो शरीफ फकीर जो साहिब निसाब नहीं है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी।
कोई ऐसा शख्स है या कोई ऐसी फैमिली है कि जिसके पास मिसाल के तौर पर जानवर तो है, ठीक है, अब उसने पाला भी है और उसने नीयत कर ली कुर्बानी की, है शरीफ फकीर, तो क्या अब उस सूरत में उस पर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं होगी?
देखिए, एक सूरत ये बयान की कि खरीदते वक्त कुर्बानी की नीयत
वो तो ठीक
और
है।
एक ये है कि खरीदते वक्त कुर्बानी की नीयत नहीं, वैसे ही पालने के लिए
पाला हुआ है जी।
अब पालने के लिए जब लाया है और अब कुर्बानी से चंद दिन पहले वो नीयत कर लेता है कि मैं इसकी कुर्बानी करूंगा,
पालते पालते नीयत
कुर्बानी वाजिब नहीं होगी।
अच्छा,
हाँ, खरीदते वक्त कुर्बानी की नीयत होगी तो वाजिब होगी,
सही।
खरीदा पालने के लिए था और अब बाद में नीयत कर ली कि मैं इसको कुर्बान करूंगा तो ये कुर्बानी वाजिब नहीं है। हाँ, नीयत की है और कोई ऐसी वजह नहीं है उससे फिरने की, तो चाहिए कि आप अपनी उस नीयत को पूरा करे, कुर्बान कर दे, लेकिन वाजिब उसके ऊपर नहीं है। वाजिब उस वक्त होगा जबकि
निसाब
वो शख्स जो कि साहिब निसाब हो या साहिब निसाब नहीं है लेकिन कुर्बानी की नीयत से वो जानवर खरीद लेता है।
उम्र के एतबार से बड़े जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए, बिलखसूस बैल और गाय वगैरह में?
बड़े जानवर की उम्र बैल और गाय 2 साल और ऊंट 5 साल,
सही।
तो इनकी 2 साल उम्र होना ज़रूरी है, कम अज़ कम मिनिमम इनकी उम्र वो 2 साल है, इससे ज़्यादा जितने के भी हों उसके अंदर हरज नहीं है,
सही।
और इस 2 साल की जो अलामत है वो ज़ाहरी तौर पर वो इनका 2 दांत वाला होना है कि वो उस अलामत से पता चल जाता है कि ये 2 दांत वाले जानवर हो गए। अगर किसी ने अपने पास ही उस जानवर को पूरा 2 साल पाला है तो अगरचे 2 दांत ना हो तो उसकी कुर्बानी वो कर सकता है।
अच्छा मुफ्ती साहब, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत जानवर है ना
माशाल्लाह।
अब यहाँ पर शौक से आई है फैमिली आई है या कुछ लोग आए हैं, जानवर पसंद किया, मोल तोल किया, घर लेके गए, घर ले जाकर जब बच्चों बच्चों को दिखाया या फैमिली को दिखाया तो घर के कुछ अफराद को, फैमिली के कुछ अफराद को जानवर पसंद नहीं आया। अब फैमिली जिद कर रही है कि जनाब इसको चेंज करें, इसको वापस दे आए, तो क्या ऐसी सूरत हो सकती है कि इसको वापस चेंज किया जा सके?
जानवर जो कुर्बानी के लिए खरीद लिया ना
जी,
तो अब उसमें अगर तो ऐसा शख्स जिसने जानवर खरीदा है जो थाई शरीफ फकीर जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है,
सही है,
तो वो तो नहीं बदल सकता उस।
अच्छा।
पर तो जरूरी है कि उसी को ही कुर्बान करे, वो जो लेकर आया उसी को ही कुर्बान करे, उसको बदलना नहीं है। अब अगर एक मालदार आदमी, जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो इतने इतने बड़े जो जानवर लेके जाते हैं ये उमूमन मालदार लोग होते हैं, तो अब अगर जानवर ऐसा ले लिया और फिर घर वाले कह रहे हैं या खुद कह रहे हैं कि ये बेच दूं तो मैं अब कोई और जानवर ले लूं,
भाई बच्चों को मारना शुरू कर दिया यहाँ से, तो बड़ा इसको चेक करके लेके गए थे, चला के भी चेक किया था, बच्चों ने भी चेक किया था, लेकिन घर जाकर बच्चों को 2-3 अगर उसने सर घुमा दिए तो बच्चों का भी सर घूम गया कि इसको बेच दो पापा, हमको ये नहीं चाहिए, इसको चेंज करो,
उसको बांधे और उसको कुर्बानी के दिनों में कुर्बान करें। अलबत्ता मसला शरी ये है कि कुर्बानी की नीयत से जानवर अगर किसी ने खरीद लिया तो उससे तिजारती नफा ये उठाने की इजाजत नहीं। कोई यहाँ से लेके चले गया 10 लाख का, 15 लाख
कुर्बानी की नीयत,
कुर्बानी की नीयत,
कुर्बानी की
नीयत, जैसे 15 लाख रुपए का उसने खरीदा, आप घर गए और सामने किसी को पसंद आ गया, वो बोला भाई हाथ के हाथ 18 लाख मुझसे लो,
3 लाख का नफा हो गया,
3 लाख का नफा, तुम 15 का दोबारा लेकर आ जाओ,
सही है।
तो ये यूं नफा इसके लिए रखना ये जायज नहीं होगा।
अच्छा, जिसने कुर्बानी की नीयत से खरीदा उसके लिए,
उसके लिए ठीक है, और हो भी गनी, शरीफ फकीर तो बेच ही नहीं सकता,
सही है।
अब गनी शख्स अगर ऐसी सूरत हाल में बेचेगा तो उस पर 18 का बुलाना जरूरी हो जाएगा।
अच्छा, जितनी कीमत का बेचा है नफे समेत उसकी कीमत का लाना जरूरी हो जाएगा,
जरूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकता कि उससे कोई नफा हासिल कर ले,
समझ गया।
बदलना है, वैसे ही जानवर है कि इसको बदल के कुछ और लेना है तो ऐसा शख्स उससे अच्छा अगर लेना चाहता है तो बदलने की इजाजत है।
अच्छा,
लेकिन अगर उससे कम में उसने लेना है तो फिर जायज नहीं है बदलना।
सही।
नहीं, एक जानवर उसने 10 लाख का ले लिया।
सही।
अब अगर घर जाकर जेन मना के मैं कोई और 12-15 लाख का लेता हूँ,
ठीक है,
तो वो तो जायज होगा उसके लिए कि वो 10 लाख का वापसी कर दे या बेच दे और 12 लाख का ले ले।
सही।
लेकिन अगर चाहता है कि 10 लाख का ले आया हूँ, 6-7 लाख में मैं करके आ जाता हूँ, तो फिर नहीं कर सकता। कुर्बानी की नियत से लेकर आप उस पर तिजारती नफे का ना सोचे, क्या मुझे तिजारती, क्योंकि चीज तो अल्लाह की बारगाह में जानी है, कबूल अल्लाह ताला ने फरमानी है। आपके दिल में जितना इखलास होगा, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वला कि यनालहु तक्वा मिनकुम, तुम्हारी ये कुर्बानियों के, यहाँ तो खास हज की कुर्बानियों का बयान हुआ कि इनके जानवरों के गोश्त और खून ये अल्लाह को नहीं पहुँचते, बल्कि वो तकवा है अल्लाह को पहुँचता जिस पर तुम्हें अजर सवाब मिलेगा।
सुभानअल्लाह। बड़े जानवर के अंदर 7 हिस्से होते हैं, अगर 5 बंदों ने कुर्बानी की नीयत से जानवर में हिस्सा मिलाया, 2 बंदे जो ऐसे हैं जो सिर्फ गोश्त हासिल करने की नीयत से शामिल हो गए कि भाई चलो हमारा हिस्सा शामिल कर लो और हमें गोश्त दे देना, गोश्त से मतलब है हमें, कुर्बानी से मतलब नहीं है, तो इस सूरत में फिर क्या शरई हुक्म होगा?
ये कुर्बानी का जानवर जो है वो अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करने के लिए, तकर्रुब इलल्लाह के लिए ज़बह किया जाता है,
ठीक है।
तो कुर्बानी के जानवर के जितने भी शुरका होंगे उन तमाम की नीयत यही होनी चाहिए, अब चाहे अकीके की हो,
अच्छा,
या कुर्बानी की हो या सदके की हो। जाती नफा के बस सिर्फ गोश्त मकसूद है मुझे,
सही,
ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, सदके की नीयत है या अकीके की नीयत है या कुर्बानी की नीयत है, तो ये नीयतें एक ही बड़े जानवर के अंदर मुख्तलिफ हो सकती
है।
इसमें यानी अगर किसी ने भी जाती नफे की कि भाई मुझे तो गोश्त चाहिए, मिसाल एक कसाब बोलता है कि भाई आप जानवर लेकर आ गए, 6 तो आपको बंदे मिल गए,
ठीक है,
1 पैसे मुझसे ले लो एक हिस्से की और इसका जो गोश्त बनेगा वो मुझे दे देना, मैं दुकान पे भेज दूंगा।
सही।
तो अब ऐसी सूरत में किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी,
किसी की भी नहीं होगी,
किसी की भी नहीं।
तो जिन्होंने कुर्बानी की नीयत से लिया है उनका क्या कसूर है बेचारे?
एक वो शख्स, क्योंकि ये मामला वही कुर्बानी का अल्लाह पाक के लिए, ऐसा किसी भी इस शख्स को आपने शरीक किया कि जिसकी अपनी कुर्बानी जाया हो रही है या वो कुर्बानी के लिए ही नहीं कर रहा, तो बकिया की भी कुर्बानी जाया हो।
आपसे क्या सवाल करना चाहेंगे?
मैं सवाल ये करना चाहूंगा, अब फर्ज कर लें एक घर में जो सा ना, मतलब 14 अफराद है और अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि मतलब वो एक ही बैल ले आते हैं और 7 कुर्बानियां करते हैं, जबकि ये बाकी लोगों पे 14 में मतलब ये वाजिब होता है उनका नहीं करते, इसके लिए ये क्या हुक्म है कि बाकियों का मतलब ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? फर्ज कर लें अब जिस तरह ये बड़ा जानवर है, ये 10 लाख रुपए में, ठीक है ना, लेकिन छोटे जानवर जो इससे कम रेट पे मिल सकते हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए? वो 14 पूरा करेंगे या वही 7 ही करेंगे? 10 लाख में एक जानवर ले लिया वो है 10 लाख का, बाकी जो सा ना, जो बाकी जो लोग रह गए हैं उनका वो क्या करना चाहिए?
अच्छा मुस्ताफ, बहुत अच्छा सवाल किया है हमारे भाई ने। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे माशरे में पाया जाता है, स्पेशली तौर पर हमारे जो ऊपर के इलाके हैं वहां पर, कि पूरे घर की तरफ से एक जानवर कर लिया, चाहे वो छोटा जानवर कर लिया, बड़ा जानवर कर लिया, किया बहुत महंगा जानवर, अच्छा महंगा जानवर किया, पैसों में पूरा था, लेकिन घर में अफराद 14 हैं, हिस्से 7 किए हैं, इसके क्या शरई हुक्म होगा? ये करना दुरुस्त होगा नहीं होगा?
देखें, जिन पर वाजिब है उन तमाम की तरफ से एक एक कुर्बानी, एक एक हिस्सा होना ये जरूरी है।
अच्छा,
जिन पर वाजिब है।
सही।
अब चाहे वो बकरे लाकर हिस्से पूरे कर दें,
सही,
या बड़े जानवर गाय बैल लेते हैं तो उसमें 7-7 हिस्सों के साथ वो पूरा कर दें।
सही।
ऐसा नहीं हो सकता कि कोई माली तौर पर मालियत के इतबार से बहुत महंगा जानवर लाए और हिस्से आधों के छोड़ दिए, अगर उन पर भी वाजिब थे फिर तो गुनाहगार हुए।
सही।
और वाजिब जिस पर है ये उसी पर ही वाजिब है, ये बात भी याद रखें।
सही।
मसलन अगर घर के जिन अफराद पर वाजिब है और वो साहिब इस्तेआत हैं, अब 2 अफराद ने खर्च किया पैसा, वो कहते हैं हम तो ये लेके आ रहे हैं,
सही है,
तो अगर तो सबके लिए आ रहा है फबिया नहीं है तो फिर उनको खुद अपना वाजिब अदा करना होगा।
अगर वो उनका हिस्सा शामिल नहीं कर रहे तो अब उन्होंने अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा,
करना पड़ेगा, यानी जेब उनको अपना वाजिब तो अदा करना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं कहेंगे कि हम इन 7 की वजह से वो बेचारा गुनाहगार हो गया,
हाँ,
जिसने 10 लाख खर्चा भी कर लिया,
सही,
तो कहेंगे इनकी नहीं हुई वो गुनाहगार।
अच्छा, लेकिन घर का देखें, बैंक एक है, इनकम एक है, कारोबार एक है, अब घर में सब कुछ मामला जो है ना वो एक ही बंदा देख रहा है, कर रहा है, वो खर्च करने की बारी आती है तो जाहिर सी बात है कि वो कंपनी से ही पैसे निकल रहे हैं और वही भाई खर्च कर रहा है। अच्छा, शादी का मामला है तो भी वही भाई सारे मामलात को देख रहा है, उसी पे खर्च कर रहा है। तो अब कुर्बानी की बारी आई है तो जाहिर है कि उसी ने खर्च करना है, क्योंकि शेयर तो सबका ही है जो घर के अंदर रह रहे हैं। तो उस सूरत में क्या हुक्म
होगा? ये तो मुश्तरका कमाई है और मुश्तरका ही खर्च हो रहा है
जी,
तो जाहिर है उसमें तमाम को ही देखना है। ऐसा नहीं कि एक भाई अपनी मन मर्जी से कहे कि मैं ऐसे जानवर एक ही लाऊंगा, बकिया के हिस्से छोड़ दूंगा,
इनके करूंगा और इनके छोड़ दूंगा,
इनके छोड़ दूंगा। तो पहले से बैठक कर रहे हैं एक दूसरे को, वो किस हिस्से हैं, इतनों पे वाजिब हो रहे हैं। ये जरूरी है कि किस पे वाजिब हो रहा है किस पे नहीं हो रहा। जैसे मैंने कहा नाबालिग बच्चों पे वाजिब नहीं है,
सही है।
अब अगर सरप्रस्त करते हैं तो उनकी मर्जी, अच्छी बात है। अब नाबालिग बच्चों को निकाल दिया बीच में से बिलफर्ज, इसी तरह घर के अफराद वो कि जिन पर इतनी ताकत इस्तेताद नहीं है, कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास अपनी सेविंग नहीं है, कुछ ऐसी चीजें भी नहीं है, जो कुछ है वो खर्चा उनको आ जाता है, बस उनको घर से खर्चा मिलता है और कुछ नहीं जमा। तो उस पर भी अगर वो बालिग भी है तो उसमें वाजिब नहीं होगी। हाँ, खवातीन हैं, बीवियां हैं, उनके पास जेवरात हैं, दीगर ये चीजें हैं, तो घर के सरपरस्त ही उमूमन, जो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जिसमें अंडरस्टूड है कि इजाजत है कि वो कुर्बानी करेंगे, तो उनको फिर इस तरह तमाम का ही ख्याल रखकर ये जानवर लाना चाहिए।
अच्छा, कुर्बानी के लिए क्या इजाजत देना जरूरी है? जैसे मिसाल के तौर पर घर में 10 अफराद हैं और 10ों पर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन एक बैंक है और एक ही कारोबार है, घर का खर्च वगैरह चलाने का सिलसिला सब एक ही तरफ से हो रहा है, तो क्या अब जब वो बंदा जानवर लेकर आएगा तो हर एक से अलग 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 इजाजत लेना जरूरी होगी, या नहीं वो लेकर आएंगे तो सबकी तरफ से ये एक्सेप्ट हो जाएगी?
ठीक है, जब भी किसी और की तरफ से आप कुर्बानी करेंगे तो उसकी तरफ से इजाजत होना जरूरी है। इजाजत दो तरह होती है, एक ये कि वो वाजे तौर पर आप उससे पूछे और वो कह दे कि भाई मेरी तरफ से कुर्बानी कर दें आप, और एक ये होता है कि वो शख्स मालूम है कि वो उसकी जेरे कफालत है, जैसे बीवी है तो अब बीवी के सारे खर्चे शौहर करता है, तो अब शौहर उसकी तरफ से जब कुर्बानी करता है तो वो अंडरस्टूड बात होती है कि औरत की तरफ से इजाजत है कि भाई तुम मेरी तरफ से कुर्बानी कर दो। इसी तरह वो बालिग बच्चे हैं कि जो उसके जेरे कफालत हैं और वो साहिब निसाब भी हैं, तो वो उनकी तरफ से अंडरस्टूड तौर पर इजाजत है। और जहाँ ऐसी सूरत हाल ना हो, भाई भाई ये अलग रहते हैं, ये अलग रहता है, अब अगर ये उनकी तरफ से कुर्बानी करना चाहता है, या मिसाल वो भाई है जो बैरून मुल्क में रहता है, अब ये उसकी तरफ से कुर्बानी करना चाहता है, तो अब इसको उससे इजाजत लेनी होगी कि भाई मैं आपकी तरफ से यहाँ पर कुर्बानी कर रहा हूँ, वो ओके कर देगा तो फिर उसकी तरफ से कुर्बानी अदा
हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो बच्चों का मुफ्ती साहब ने कहा कि जो जेर किफालत बच्चे हैं तो अब उनसे इजाजत लेना जरूरी नहीं है?
जी, जो जेर किफालत बच्चे हैं उनसे इजाजत लेना जरूरी नहीं, कि उनकी तरफ से अंडरस्टूड तौर पर जो है वो इजाजत मौजूद है।
अच्छा, यहाँ एक मसला ये हो जाता है
जी
कि जैसे चले, ये तो हम एक अपर लेवल की फैमिलीज की बात कर रहे हैं ना कि जिनका कुर्बानियां इतनी होती, जानवर इतने होते हैं। अगर हम आम नॉर्मल तबके की करें तो वहां पे बाद औकात बीवी पे कुर्बानी वाजिब हो रही होती है, शोहर पे नहीं।
सही है।
शोहर एक आम ड्यूटी करता है, मुलाजमत करता है, वो 30,000, 35,000, 40,000 कमाता है, खर्च कर देता है। बीवी अपने पास जेवरात लेकर आई है, बीवी कुछ ऐसी चीजें लेकर आई है, तो असल ये चीज भी समझनी चाहिए कि ये इबादत है किस पर। बीवी, अगर बीवी पर जकात लाजिम हो रही है तो बीवी पर ये इबादत है।
सही।
कुर्बानी है तो बीवी पर ये कुर्बानी है।
सही।
ये नहीं हर चीज मुन्ने के अब्बा के खाते डाल दें,
ऐसा नहीं,
आप भी करो, ऐसा है नहीं। वो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि सामने वाला कह रहा है कि मेरी इस दवा गुंजाइश नहीं,
ठीक है,
मेरे पास कोई सेविंग नहीं है, कुछ भी नहीं। तो अब अगर बीवी साहिब निसाब है तो उसको अपना वाजिब अदा करना है।
सही। अपने पल्ले से करना,
अपने पल्ले से करे, कहीं यानी वो हिस्सा डाले, जरूरी नहीं होता कि पूरा जानवर ही लाए, लेकिन अपना वाजिब अदा जरूर करें। हमारे यहाँ जैसे हम देखते हैं शहरों में 22,000, 25,000, 24,000, 20,000 कुर्बानी का हिस्सा डल जाता है,
सही।
और उसके जरिए अपना वाजिब तो अदा हो गया ना,
अदा हो जाता है।
वाजिब अदा, क्योंकि जब हम निसाब बताते हैं कि 1,40,000, 45,000, तो लोग कहते हैं इतने का जानवर ही नहीं आएगा।
बिल्कुल।
तो भाई इतने का पूरा जानवर आपको थोड़ी क्या जा रहा है,
बकरा ले,
बकरा लाए या एक हिस्सा डाले, बकरा भी महंगा होता है, आप हिस्सा डाल लें, यानी अपना वाजिब अदा करें, क्योंकि इसकी अहमियत को सामने रखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास ताकत वुस्सत हो और फिर भी कुर्बानी ना करे वो हमारे ईदगाह ना है।
अल्लाह हू अकबर।
तो ऐसे शख्स से इतनी बड़ी ये नाराजगी का एक तरह का इजहार फरमाया गया कि जो साहिब इस्तेताद है। तो हमारा ज़हन वाजिब की अदायगी की तरफ होना चाहिए, न कि जो सवाल भाई ने शुरू में किया कि एक बड़ा जानवर हो और आधों के वाजिब भी छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पर घर में लेडीज है, उनके पास गोल्ड है या ऐसी चीजें मौजूद हैं, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद हैं, लिक्विड नहीं है, यानी पैसे नहीं है उनके पास, तो अब क्या करेंगी? शोर भी मना कर रहे हैं, घर से शोर के पास हैं भी, लेकिन शोर ने मना कर दिया कि भाई अपनी कुर्बानी खुद देखो, तो अब क्या करेंगी?
देखें, इस सूरत में हुक्म तो यही होगा कि अगर वाकई किसी की घर की यही कैफियत हो गई है, तो अब बीवी अपना वाजिब तो देखेगी, उसको तो अदा करेगी।
कहाँ से करेगी, लिक्विडिटी नहीं है ना।
जी हाँ, हम कहते हैं सोने को कैश करवाएं, ठीक है, कुछ ना कुछ सोना बेचे, अगर ये नहीं कर सकती तो फिर कुछ कर्जा ले ले, फिर कुछ कर्जा ले ले और अपना ये वाजिब अदा कर ले, बाद में कर्जा वापसी कर दे।
मतलब
अगर 20,000-25,000 किसी से पकड़ लिए,
शोर को ही मनाना पड़ेगा और क्या,
शोर को मना ले। हाँ, शोर को मना ले, ये भी सही है, शोर मना ले। लेकिन शोर को इस पोजीशन पे ना लाएं कि शोर मना कर दें कि मैं आपकी कुर्बानियां नहीं करूंगा।
बहुत अच्छी बात की है मुफ्ती साहब ने कि शोर को इस पोजीशन पर ही ना लाएं कि अव्वल तो वो मना कर दें, और अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी सूरत हो गई है तो फिर कुर्बानी जरूर करनी है, और कुर्बानी अगर ना की तो फिर इसकी वईद भी मुफ्ती साहब ने बयान की है। अल्लाह हमें अपनी राह में खुलूस के साथ और मोहब्बत के साथ कुर्बानी करने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाएं। आपसे इजाजत लेंगे, फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड एक नई लोकेशन के साथ। इंतजार कीजिएगा, मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नहीं है अमल कोई उम्र में खुदा को कुर्बानी से भी जो प्यारा।